اور اسلام میں ساری رہبری اس کا کیا حق ہے اور اس کا پابند کیا ہے اللہ تعالیٰ نے, اور اس حقوق کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے وہاں جواب دہی مسئلہ دنیا میں پورا نہیں ہو جاتا ہے. چاہے آدمی بیوی کا شوہر ہے, اس بیوی سے متعلق قیامت میں اللہ تعالیٰ اس شوہر سے سوال کرے گا, اس کے حق کے بارے میں پوچھے گا. بچوں کا باپ ہے تو ان بچوں کے حقوق کے بارے میں جواب دہی ہوگی وہاں پر. جتنا سارا ہے یہاں قصہ ختم نہیں ہوتا. آدمی انسان یہ سمجھتا ہے کہ اپنی مختلف قسم کی جو اللہ کی دی ہوئی صلاحیتیں ہیں ان صلاحیتوں کی بنیاد پر آدمی چھٹکارا پا لے گا. کسی کو اللہ نے طاقت دی ہے, زور دیا ہے, تو اپنی طاقت سے سامنے والے کو دبا کر آدمی چھٹکارا پا لے. کسی کو پیسہ دیا ہے, پیسہ خرچ کر کے سامنے والے کو دبا دے. یا کسی کو اثر رسوخ دیا ہے تو اپنا اثر رسوخ استعمال کر کے دبا دیا. یا کسی کو اکثریت دی ہے, بڑا خاندان دیا ہے, تو اپنی اکثریت کی بنیاد پر آدمی یہاں دنیا میں فتح حاصل کر سکتا ہے, لیکن میدان قیامت میں کسی کی اکثریت, کسی کا مال اور کسی کی وجاہت, کسی کا عہدہ, کسی کی کرسی کچھ نہیں چلے گا. وہاں کورا کرا کوٹا سامنے آ جائے گا. کسی کا وکیل نہیں چلے گا, کسی کا حمایتی کھڑا نہیں ہوگا کوئی بھی. جس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو اللہ سے ڈرایا, اور خود اللہ جل جلالہ محمد والوں نے بار بار اللہ سے ڈرنے کو کہا, بار بار اللہ سے ڈرے, اللہ سے ڈرے. یہ نکاح کے موقع پر خطبے میں جو آیات پڑھی جاتی ہیں, ہم متن جو آیات خطبے میں پڑھی جاتی ہیں اس میں بار بار اسی کی تاکید ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو. او ایمان والو اللہ سے ڈرو. ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے, مشرکوں سے نہیں. ایمان والوں سے کہ اللہ سے ڈرو, اور ایسا ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے. اور ایمان والے ہیں پھر بھی اللہ تاکید کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ تمہاری موت نہ آئے مگر اسلام پر مری ہو. لا تموتن الا وانتم مسلمون, ایسا نہ ہو کہ زندگی ایمان پر گزرے لیکن بعض گناہوں کی وجہ سے اور بعض حقوق کی پامالی کی وجہ سے آدمی موت کے وقت اسلام سے, ایمان سے محروم ہو جائے. اللہ تعالیٰ تاکید کر رہا ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون, کہ تمہاری موت نہ آئے مگر تم مسلمان ہو, اسلام کی حالت میں موت آئے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ, یہاں پھر اللہ ڈرا رہا ہے, یاد دلا رہا ہے. وہ لوگوں عام خطاب ہے سب کو, اللہ سے ڈرو, اس اللہ سے ڈرو جس نے تم کو ایک ماں باپ سے پیدا کیا ہے, تمہارا کوئی وجود نہیں تھا. خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله, پھر دوبارہ واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام. جو اس اللہ سے ڈرو, دوبارہ کہہ رہا ہے کہ تم سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا تمہاری رشتے داریوں کے بارے میں, حقوق کے بارے میں سوال ہوگا. وہاں حقوق کے بارے میں سوال, ان اللہ کان علیکم رقیبا, یہ نگرانی اللہ کر رہا ہے, اللہ براہ راست مراقبہ کر رہا ہے, نگرانی کر رہا ہے. بوجھ ہماری بوجھ میں اللہ ہے. آدمی جب کہیں لکھا ہو کہ انڈر سی سی ٹی وی کیمرا, تو آدمی چوکنا ہو جاتا ہے کہ بھائی آپ سی سی ٹی وی کی آن کی نظر میں ہیں, ایسا پڑتا ہے آدمی چوکنا ہو جاتا ہے. تھوکتا بھی ہے تو ذرا دیکھ کے تھوکتا ہے, پھر بولتا بھی ہے تو ذرا ٹھیک سے بولتا ہے, اپنے کپڑے وپڑے دیکھ لیتا ہے کہیں الٹا سیدھا تو نہیں کیمرے میں آ رہا ہوں. ہر طرف سے آدمی چوکنا, بولنے میں, چلنے میں, پکڑنے میں, چھونے میں, دیکھنے میں, ہر طرف سے محتاط ہو جاتا ہے کہ کیمرے میں آ رہا ہوں. اللہ کے کیمرے ہر ایک کے ساتھ لگے ہوئے, ان اللہ کان علیکم رقیبا, ہر ایک اللہ کی نگرانی میں ہے, کوئی اس سے باہر نہیں ہو سکتا. اس لیے ہر ایک سے کہا کہ وہ ڈرتے ہوئے زندگی گزارے, بے خوف نہ ہو جائے, آزاد نہ ہو جائے, اور معذرت کرتا رہے ہمیشہ, معذرت کرتا, اللہ سے توبہ کرتا رہے بندوں سے معذرت کرتا رہے, لوگوں سے معافی مانگتا رہے, بار بار اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے, جیسے کوئی معاملہ بھائی معاف کر دے, ذرا دو چار دن ساتھ میں رہے بھائی کوئی تکلیف پہنچ گئی اللہ کے واسطے معاف کر دینا. بی بچوں کے ساتھ آدمی, بچوں سے بھی, اپنے بچوں سے بھی آدمی معافی مانگے کہ تمہارے حقوق میں اگر مجھ سے کوئی کوتاہی ہوئی تو تم مجھے معاف کر دو. بیوی سے آدمی معافی مانگتا رہے کہ اگر تیرے حق میں کوئی کوتاہی ہوئی تو معاف کر دینا. ماں باپ سے آدمی معافی مانگتا رہے, معذرت خواہ رہے, جیسے اللہ سے آدمی توبہ کرتا رہتا ہے, رمضان آتا ہے شوال میں توبہ کرتا ہے, عید کے دن توبہ کرتا ہے, اور مختلف اوقات میں جہاں جہاں موقع ملتا ہے توفیق ہو جاتی ہے تو آپ کے گناہوں سے معافی مانگتا ہے, ایسے آپس میں بھی بندے آپس میں ایک دوسروں سے معافی مانگتے رہے, معذرت خواہ رہے ایک دوسروں کے, کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے لیتے دیتے کچھ نہ کچھ آپس میں ہو جاتا ہے, اور آدمی دل صاف رہے, دل صاف, کیونکہ اللہ کے وہاں صاف دل کام دے گا, جسم تو یہاں سڑ جائے گا, قبر میں ختم ہو جائے گا, دوبارہ اللہ نیا جسم دے گا وہاں, لیکن جنت میں صاف دل کے لوگ جائیں گے. حدیث میں آتے کہ ذرا برابر اگر کبر ہے, بڑائی ہے بندے کے دل میں, تو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. پہلے اس کو جہنم کی بھٹی میں بھیج کر وہاں اس کے قلب کی صفائی کی جائے گی جہنم میں, اور پھر وہاں سے اس کو جب اس کا دل صاف ہو جائے گا اور یہ ساری کدورتیں دل سے ختم ہو جائے گی, اس کے بعد اس کو جنت کا داخل کیا جائے گا. اس لیے بندہ یہاں اپنا دل صاف رکھے ہر ایک سے, ہر ایک سے اپنا دل صاف رکھے, اپنی بیوی سے سب سے زیادہ, بیوی بچوں سے, ماں باپ سے, بھائی بہنوں سے, جو سب سے قریب, زیادہ شیطان جو رنجی سے ڈالتا ہے وہ قریبی رشتے داروں میں ڈالتا ہے, کیونکہ وہاں رشتے داری اور اوپر صلہ رحمی بہت سارے فضائل منافق جمع ہو جاتے ہیں اگر یہ محبت سے رہتے ہیں, اور بہت ساری نصرت کے اسباب جمع ہو جاتے ہیں ان کی محبت پر, یہ جو خاندان جڑا ہوا ہوتا ہے اور آپس میں صلہ رحمی ہوتی ہے, دو اللہ کی طرف سے بہت ساری مددیں ہوتی ہیں, نصرتیں ہوتی ہیں, رحمت اترتی ہیں, برکت ہو جاتی ہیں. علماء نے حدیثوں میں آتا ہے کہ صلہ رحمی کرنے والا کے آثار قدم بڑھ جاتے ہیں, یعنی اس کی عمر میں برکت ہو جاتی ہے, اس کی روزی میں برکت ہو جاتی ہے صلہ رحمی سے اور خرچ کرنے سے, تو شیطان وہیں سے شروعات کرواتا ہے, وہیں سے ابتدا ہو جاتی ہے. اور چونکہ دین ہے نہیں, دین نہیں ہے ہماری معاشرہ کی زندگی میں, دین نہیں ہے, دور دور تک نظر نہیں آتا, اور ہم دھوکے میں, ہم دھوکے میں, آدمی مسجد میں نکاح کرتا ہے سمجھتا ہے سنت کے مطابق کر دیا, بہت اچھی چیز ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد میں اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا نکاح جمعہ کے دن کیا, ایک سنت ہے, لیکن اس کے بعد جو خرافات گھر میں ہیں, جو گھر میں خرافات ہیں اور اس پر سب خاموش ہیں, سب خاموش ہیں, جو حرام کے درجے تک پہنچے, بازے صرف رسومات نہیں ہیں, بازے چیزیں صرف رسم نہیں ہیں, یہ رواج ہیں, بلکہ ان رواجات میں ہونے والی جو چیزیں ہیں وہ حرام کے درجے تک کی ہیں, حرام کے درجے تک کی ہیں, لیکن عمومی طور پر چونکہ نہیں امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کا ماحول نہیں, اچھائی کی بات کرنا, بھلائیوں کو پھیلانا, خیر کی طرف لوگوں کو بلانا اور برائیوں سے روکنا, جو مومن کا ایک وصف تھا, ایمان والے کا, والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینهون عن المنکر, جو ایمان والوں کا وصف ہے, ایمان والے مردوں کا بھی عورتوں کا بھی, یہ آپس میں ایک دوسروں کے خیرخواہ ہیں, اور خیرخواہی میں اللہ تعالیٰ نے جو وصف بیان کیا اس میں نہیں کہا کہ لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں, پانی پلاتے ہیں, شربت پلاتے ہیں, افطار کراتے ہیں, یہ نہیں کہا, بلکہ اللہ نے کہا یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر, یہ لوگوں کو بھلائیوں کی طرف بلاتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں. اس وصف کی کمی کی وجہ سے سارے خرافات شادیوں میں, منگنیوں میں اور دیگر جو مواقع خوشی اور غمی کے آتے ہیں اس میں لوگ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں, دیکھا دیکھی آپے سے باہر ہو جاتے ہیں, اللہ کو بھول جاتے ہیں, अपने नबी अलैहिस्सलाम जिस नबी से मोहब्बत का दम भरते हैं उस नबी अलैहिस्सलाम की मुबारक तालीमात को भूल जाते हैं, और उसकी वजह यही है कि उसकी याद दहानी नहीं है। शादी के मौकों पर, मंगनी के मौके पर, वलीमे के मौके पर, रुख्सती के मौके पर, इन मौकों पर इसकी याद दहानी हो, और हर एक इसका जवाबदार है, हर एक जवाबदार है। उस खानदान के लोग भी जवाबदार हैं, पड़ोसी भी जवाबदार हैं, मोहल्ले वाले भी जवाबदार हैं, मोहल्ले के बड़े छोटे मर्द औरतें सब जवाबदार हैं। अल्लाह ताला सबके बारे में कह रहा है कि आपस में तैर रहा है, सारे ईमान वाले, ईमान वाले मर्द, ईमान वाली औरतें आपस में तैर रहे हैं। जहां कोई बुराई हो रही है वहां सब मिलजुल कर कोशिश करेंगे कि उस बुराई बुराई की जगह अच्छाई वहां वजूद में आ, बुराई वहां से खत्म हो जाए, चाहे वो किसी सतह की बुराई हो। मकरूह दर्जे की बुराई को अगर न रोका गया तो वो हराम के दर्जे तक पहुंच जाएगी। बल्कि हमारी कोशिश तो ये होगी कि कोई पहले मकरूह भी वजूद में ना आवे, उसकी जगह सुन्नत वजूद में आवे। इसलिए उलमा ने लिखा है कि अगर हम चाहते हैं, हम चाहते हैं कि दुनिया से जितने सारे खुराफात और बिदात वो खत्म हो, तो उन खुराफात और बिदात के मुकाबले की सुन्नतों को हम वजूद में ला, उसके मुकाबले में जो सुन्नतें हैं उन सुन्नतों को वजूद में लाया जाए और उसको सराहा जाए, उसकी तारीफ की जाए, उन सुन्नतों को बोला जाए। अगर कोई आदमी अमल कर रहा है उसको सराहा जाए कि आपने बहुत अच्छा किया, या आपने सादा निकाह कर दिया, उस बाप को सराहा जाए, उसको मुबारकबाद दी जाए कि आप बहुत काबिल मुबारकबाद हो कि आपने अपने बेटे का, अपनी बेटी का निकाह सादा किया। उस दूल्हे को मुबारकबाद दी जाए, भाई अल्लाह आपको जजाया खैर दे कि इस जमाने में लोग बहुत सारी खुराफात करते हैं और आपने सुन्नत के मुताबिक निकाह किया, अल्लाह आपको मुबारक करे। उसके भाइयों को मुबारकबाद देनी चाहिए, उसकी बहनों को मुबारकबाद देनी चाहिए कि अल्लाह आपके खानदान को आबाद रखे, आप लोगों ने सुन्नत के मुताबिक निकाह किया, आपकी रुख्सती सुन्नत के मुताबिक हुई। वरना उसके मुकाबले में जो खुराफात हैं वो बाज़ मरतबा हराम के दर्जे तक पहुंच जाते हैं, और सिर्फ वो करने वाले गुनहगार नहीं होंगे, ये बनी इसराइल नहीं है, ये उम्मत मोहम्मद है। सिर्फ करने वाले गुनहगार नहीं होंगे बल्कि उनको देखने वाले, उसमें शरीक होने वाले सबसे पहले, उस निकाह, चाहे वो निकाह हो, चाहे वो तकरीब निकाह की तकरीब हो जो एक मुबारक तकरीब कहलाती है, इबादत की मजलिस है, मजलिस से निकाह, लेकिन अगर वहां हराम काम हो रहे हैं, मर्दों औरतों का इख्तिलात शरीयत में किसी जगह जायज नहीं है। मर्दों औरतों का, यानी मर्दों और औरतों का किसी एक जगह जमा होना, चाहे वो एक ही मर्द एक ही औरत हो, या 10 मर्द 10 औरतें हो, या 100 मर्द और 100 औरतें हो, अगर गैर महरम है इनका इज्तिमा किसी हाल में जायज नहीं है, किसी भी मकसद के तहत इनका जमा होना जायज। हुजूर अलैहिस्सलाम के जमाने में औरतें मस्जिद में आकर नमाज पढ़ती थी, आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया बाद में आपकी, अगर हुजूर अब मौजूद होते और हुजूर जिंदा होते, पहली सदी में जिसको खैरुल कुरून कहा उस वक्त है आयशा, अगर हुजूर इस वक्त होते तो हुजूर औरतों को मस्जिद में आने से मना करते, अब वो जमाना नहीं रहा, अब वो जमाना नहीं रहा। हालांकि पूरे पर्दे के साथ आती थी और उनकी जगह अलग होती थी, वहां वो नमाज पढ़ती थी, चली जाती, और नमाज है नमाज जो फर्ज है बाद में जाकर उसको वही कर दिया गया कि औरतें अपने घरों में नमाज पढ़े और मर्द मस्जिद में आकर नमाज। तो नमाज जैसी जो अहम तरीन इबादत है उस इबादत में मर्दों औरतों को जमा नहीं किया कि वो अलग रहे। हज के लिए औरत जाती है, अगर उस औरत के पास साथ उसका महरम नहीं है तो चाहे उस औरत पर हज फर्ज है उसको अभी नहीं जाना, उसकी फर्जियत के लिए महरम भी शर्त है, उसका महरम उसका शौहर हो या उसका महरम हो जो उसके साथ जाएगा तब जाके वो सफर करे, वरना उसके ऊपर हज फर्ज है वो हज न करे क्योंकि उसके पास अभी महरम नहीं है। तो हज जैसी इबादत है या नमाज जैसी इबादत है, लेकिन इख्तिलात को, और अगर सफर कर रही है तो बगैर महरम के सफर को शरीयत ने इजाजत नहीं दी, वो हज अभी मौकूफ कर देगी, जब तक उसके महरम का इंतजाम न हो वहां तक वो हज नहीं पड़ेगी, लेकिन अकेली सफर नहीं करेगी। मर्दों औरतों का इख्तिलात जायज नहीं हमारे, चाहे वो कहीं भी हो रहा हो, शादी के नाम पर हो रहा हो, मंगनी में हो रहा हो, और जितने ये करीबी रिश्तेदार हैं, चचाजाद भाई, मामूजाद भाई, खालाजाद भाई, खूबीजाद भाई, ये सारे गैर महरम हैं, हम मतलब जो खानदानों में से देखते हैं कई मंगनी है कई शादी है तो जितने फूफी के बेटे खाला के बेटे और मामू के बेटे चचा के बेटे सब वो जमा होते हैं, चचा की बेटियां फूफी की बेटियां खाला की बेटियां उन्हीं का वो इज्तिमा होता है, उन्हीं का इज्तिमा होता है। निकाह के जरिए से एक जोड़ा, निकाह के जरिए से एक जोड़ा अपनी एक नई जिंदगी शुरू करता है, लेकिन उससे पहले उस घर में कितना हराम होता है वो घर वाले ही जानते हैं इनके इख्तिलात की वजह से, जो इख्तिलात किसी हाल में भी रवा नहीं, किसी हाल में रवा नहीं। ये सारे गैर महरम है, इनका आपस में उठना बैठना मिलना जुलना आपस में बातचीत करना शरीयत में जायज नहीं, इनका आपस में एक दूसरों के सामने आना जायज नहीं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने किसी सहाबी ने देवर के बारे में पूछा कि या रसूलल्लाह देवर का क्या हुक्म है, तो हुजूर ने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह मौत कि तेरा देवर जो है वो तो मौत, देवर अपनी भाभी के साथ बात करे हुजूर कह रहे वो तो मौत की तरह है, जैसे मौत से आदमी भागता है डरता है ऐसे देवर से भाभी भागेगी कि इससे फितने का ज्यादा अंदेशा है और जिना का दरवाजा खुलेगा यही फहाशी का दरवाजा खुलेगा यहां से। जितनी मंगनियां जितनी शादियां हम जरा नजर दौड़ा हुए लेकिन एक मुनकर जब अपने उरूज पर पहुंचकर वो उसका शुरू हो जाता है आम हो जाता है तो उस मुनकर की कबाहत दिलों से खत्म हो जाती है। जैसे गैर मुस्लिम माशरों में देहातों में जाते हैं सारे घर में शराब है तो कोई किसी को नहीं कहता भाई तू मत पी, सारे शराबी हैं। हमारे माहौल में अगर पता चला कि पीता है तो 10 आदमी उसको रोके भाई क्या करता है शराब हराम। उस माहौल में जहां सुअर का गोश्त खाया जाता है वहां तो खुली दुकानें लगी हुई हैं, लेकिन यहां अगर पता चले पहला आदमी लाया था उससे कोई बात नहीं करेगा तो सुअर का गोश्त खाता है, तो सुअर का गोश्त जितना हराम है उतने ही दर्जे का गैर महरम से इख्तिलात हराम है, उतने ही दर्जे का है। जितना शराब हराम है उससे ज्यादा ये हराम है। क्या कि अपने गैर महरम के साथ बिना तकल्लुफ बात कर रहा है, भाभियों के साथ और चचाजात बहनों के साथ फूफीजात बहनों के साथ खालाजात बहनों के साथ, वो तो उर्फ में उनको बहन कहा जाता है वरना वो बहनें नहीं है और ये भाई नहीं है वरना निकाह कैसे होता उनका, वो तो उर्फ में भाई बहन कहा जाता है चचाजात फूफीजात है वरना अगर भाई बहन है तो निकाह कैसे जायज होगा, इनसे तो निकाह जायज है हमारे दीन में मजहब में, तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए। और हम कुछ पूरा औरतों पर थोपते हैं इस मामले में कि वो बेहया हो गई है पर्दा नहीं करती, हम कितना पर्दा कर रहे हैं, जितना पर्दा औरतों पर फर्ज है उतना हमारे ऊपर भी तो है कि जितना उनको गैर महरम के सामने नहीं आना है उतना हमें भी तो गैर महरम औरत के सामने नहीं जाना है। हाँ इतना है शरीयत में कि मर्द के जिस्म का पर्दा नहीं करार दिया है, औरत के जिस्म पर भी कोई चादर के जरिए से या बड़ा मोटा कपड़े के जरिए से उसको यह हुक्म दिया कि अपने घर से बाहर आवे तो वो अपने सतर को छुपा ले, उसका सतर चूंकि पूरा जिस्म है इस वजह से उसको पूरा जिस्म छुपाना होगा, वरना मर्दों के जिम्मे भी हैं कि चचाजात मामूजात फूफीजात खालाजात भाभी और इस किस्म की मुमानी चची ये जो है महरम नहीं होती आदमी, इनके सामने आदमी बिना तकल्लुफ नहीं है। हां अगर जरूरत है बात करने की पर्दे से बात करेगा दूर रहेगा उनसे रूबरू उनके नहीं होगा और दूर रहकर आदमी पर्दे से बात करेगा आंखों से आंखें नहीं मिलाएगी उनसे हंसी मजाक कैसे कर सकता है, यही से अय्याशी और आबादगी की राय खुलती है और जिना को फरोग मिलता है। ये शरीयत का बड़ा अमर है बड़ा हुक्म है पर्दा और हया मंगनी के मौके पर शादी के मौके पर ईद के मौके पर मुख्तसी के मौकों पर ये सारी चीजें जो है उसकी इब्तिदा यही से होती है कि जहां बेपर्दगी हुई है वहीं से फिर आगे के दरवाजे खुलते हैं। बातचीत पहले नजर से नजर मिलती है फिर बातें होती हैं और फिर हाथ हाथ में आता है और फिर वहां से सारे काम आगे बढ़ जाते हैं। इसलिए हरेक को जवाब नहीं अल्लाह को है, कौम को समाज को उलमा को जवाब नहीं देना है, जवाब अल्लाह को देना है। और अल्लाह कह रहा है अल्लाह ताला तुम्हारी बराबर वॉच किए हुए है, इन्नल्लाह कान अलैकुम रकीबा, अल्लाह की वॉच बराबर लगी हुई है, वो बराह-ए-रास्त देख रहा है सबको, उसको फरिश्तों की मदद की जरूरत नहीं है, लेकिन अल्लाह का एक निजाम है उस निजाम के तहत उसने हर आदमी के साथ दो फरिश्ते लगाए हैं जो उसके नेकियों को और उसकी बुराइयों को लिख रहे हैं। और कयामत के लिए पूरा रजिस्टर रिकॉर्ड तैयार होकर आएगा, जैसे सीसीटीवी रिकॉर्ड निकाल के देता है पिछले 15 दिन का और पूरे महीने का रिकॉर्ड है और वीडियो के साथ रिकॉर्ड है पूरा महीने भर का, ऐसे अल्लाह के वहां पूरी जिंदगी का रिकॉर्ड निकलेगा सबका, पूरी जिंदगी का रिकॉर्ड निकलेगा। इसलिए जरूरत है अल्लाह से डरे, अल्लाह से कौन क्या कर रहा है ना देखे, हम क्या कर रहे हैं और मुझे क्या करना है, अपनी जिंदगी का फैसला हम करें। नमाज के साथ अगर ये गुनाह मिले हुए हैं और रोजों के साथ ये गुनाह मिले हुए हैं और इन चीजों के साथ, तो वहां कयामत का तो तराजू होगी अल्लाह की, उसमें नेकियां बुराइयां दोनों तोड़ी जाएगी, दोनों तोड़ा जाएगा, हम देख लें कि हमारी नेकियां वाली है बुराइयां वाली। इसलिए गुजारिश है कि अल्लाह के वास्ते इन उमूर में कोशिश करें कि इस्लाम पर अमल करें। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म क्या है और दीगर हुक्म, ये तो एक मिसाल थी, दीगर जिंदगी के शौकों में सब जगह हमारी नजर इसी पर हो कि हमरे खुदाबंदी क्या है, अल्लाह का हुक्म क्या, और अपने दाद से हम पाबंद बने, तकवा इख्तियार करें। तकवा अल्लाह का डर जो आदमी को तन्हाई में गुनाह से बचा देगा, रात के अंधेरे में बंद कमरे में आदमी गुनाह नहीं करेगा, उसका हाथ कांप जाएगा मोबाइल में गलत तस्वीरें देखते हुए, उसकी आंखें अपने आप बंद हो जाएगी, भूले से अगर कोई तस्वीर गलत आई है उस पर तो आंखें अपने आप सेकंड के 100वें हिस्से में बंद हो जाएगी, क्या नजर टिकेगी उस तस्वीर पर, और आदमी उस तस्वीर को पहचान नहीं पाएगा कि उसने क्या देखा है, उतनी देर में उसकी नजर बंद हो जाएगी। अगर अल्लाह का डर है, और अल्लाह का डर नहीं है तो आदमी को फिर दुनिया में तो छुपने के बहुत सारी जगह हैं, कई भी आदमी छुप सकता है लेकिन अल्लाह से कोई नहीं छुप सकता। इसलिए कोशिश करें अपने आप को बचाए, वरना ये गुनाहों की नहूसत और ये बदनजरी और जिना और दवाई जिना कितने सारे उसकी नहूसत ऐसी होती है कि आदमी आमाले खैर से महरूम हो जाता है और इबादत की लज्जत से महरूम हो जाता है, ईमान की हलावत से महरूम हो जाता है, इत्तिबाए सुन्नत की चाशनी से आदमी महरूम हो जाता है और आखिरत की रग़बत और जन्नत की तलब से आदमी महरूम कर दिया जाता है और दुनिया में ही अपनी चाहते ख्वाहिशें पूरे करने के चक्कर में पड़ जाता है। अल्लाह ताला हम सब की इससे इबादत फरमा। इसलिए आप हज़रात से गुजारिश है, ये कम अज़ कम इतना मजमा तय करता है कि हमको बेहयाई के जितने असबाब हैं उन असबाब से अपने आप को बचाना है और हमें शरी पर्दा करना है, जिस पर्दे का अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है, कुल लिल मुमिनीन यगुद्दू मिन अबसारिहिम व यहफ़ज़ू फुरूजहुम, ये ईमान वालों से कह दीजिए कि अपनी नजरें झुकाए रखें, हर गैर महरम से झुका रहे, सिर्फ रास्ते चलती किसी औरत से नहीं, अपने घर में जितने गैर महरम है उनसे भी आदमी नजर झुका रहे, वरना ईमान की हलावत आदमी को नसीब नहीं हो सकती। इसलिए आप हजरात से गुजारिश है कोशिश करें और मंगनी शादियों के जो रसूमात हैं अल्लाह के लिए, अल्लाह के अल्लाह देख रहा है जो बहुत बड़ी जात है, और मर के कब्र में जाना चाहते पूरी हो जाएगी लेकिन गुनाह लाजिम हमारे साथ जाएगा, जो कब्र तक जाएगा और मशर तक जाएगा, मैदान मशर में खड़ा रहना मुश्किल हो जाएगा, आदमी अपने गुनाहों के बकदर पसीने में डूबा हुआ हो कहां जाएगा। इसलिए अपने आप को अल्लाह के लिए इससे बचाओ, अपने घर में माहौल बनाओ, अपने दोस्तों में अगर किसी की शादी है, मंगनी है, रुखसती है, वलीमा है, ऐसे मौके पर उनको अल्लाह से डरावे, अपने बस की कोशिश करें, हमारी बात से हमें अंदाजा है कि काबू में आ जाएगा ठीक, अपने दोस्तों को साथ लें, हर बस्ती में हर मस्जिद में उलमा है उनको साथ लेकर जाए, जिम्मेदार किस्म के लोग हर जगह होते हैं उनको साथ में लेकर जाए, मोहल्ले में कोई वडील है कोई जिम्मेदार उनको ले, भाई इनकी बात ये सुन लेंगे, तो किसी भी तरह कोशिश करिए, ईमान का आखिरी दर्जा है, ये ईमान का आखिरी दर्जा है, आदमी उस बुराई को बुरा समझकर उस बुराई के इजादे की कोशिश करें, सिर्फ बुरा समझ लेना काफी नहीं है, फल योग गिर विकल्प गिरी यानी दिल से बुरा समझकर उस बुराई को खत्म करने की तदबीर में आदमी लगे, ये आखिरी दर्जा है कि खामोशी के साथ तदबीर करें कि बुराई कैसे खत्म हो जाए, इसके लिए गुजारिश है इसकी कोशिश में लगे, इज्तिमाही तौर पर ऐसा माहौल बनावे, एक जमाना था कि इन मोहल्लों में कोई औरतें शादी में नाच नहीं सकती थी, माहौल था ऐसे, बाजे बूढ़े बाजे जवान जैसे पहुंच जाते थे उनको अपना वो तमाशा बंद करना पड़ता था, कोई तमाशा नहीं कर पाता, लेकिन अब चूंकि नम्र बिल मारूफ नहीं है मुनकर करने वाले सब खामोश हो गए, तो उनको कौन समझाए भाई, अल्लाह के लिए लोग अपनी प्रॉपर्टी के लिए अपनी जायदाद के लिए दुश्मनी करते हैं अपने खानदान से, अपने बाप दादा की विरासत का हिस्सा आदमी को लेना है तो पूरे खानदान से अकेला दुश्मनी कर लेता है, लेकिन अल्लाह का अमर कोई जिंदा हो वहां आखिरी दो आदमियों से दुश्मनी करना तैयार है। हालांकि दुश्मनी हमें नहीं करनी किसी से दुश्मनी नहीं करनी, हर एक को मोहब्बत से समझाना है। अल्लाह ने हमें इसी का हुक्म दिया है, तब उनको समझावे, हाथ जोड़े, पैर पड़ जावे, हाथ जोड़ेंगे पैर पड़ेंगे, नरमी से मोहब्बत से समझाएंगे। किसी पर डंडा उठाने का हमें हुक्म नहीं, किसी को गाली देने का हुक्म नहीं, किसी को बावा से बुलंद टोकने का हमें हुक्म नहीं है, लेकिन नरमी के साथ तो हम अमर बिल मारूफ नहीं है मुनकर कर सकते हैं। इसलिए कोशिश करें, इसलिए भाई करेंगे इंशाल्लाह। कौन कौन करेंगे? सभी तय करके जाते कि आइंदा आने वाली जितनी मंगनियां शादियां वली में रुखसतियां होगी सबको पता होता है क्या होने वाला है कितना होने वाला है। वहां से लोग खामोश होकर आखिरी दिन तबसरा करते हैं, जब होता है तब तमाशा करते हैं तबसरा करते हैं, ये जायज नहीं। जब से पता चला है वहीं से कोशिश में लग जावे, तदवीर में लग जाए कि इस किस्म के खुराफात वजूद में आ ना आवे और मंगनियों शादियों वगैरह में जो है सादगी वजूद में आवे, सादगी के साथ उतना पैसा जो है दूसरे मसरफों में लगे। ये जो जाया हो रहा है पैसा, जाया हो रहा है जो पैसा बिल्कुल पॉकेट में जा रहा है और बबाल बन रहा है, आखिरत का बबाल बन रहा है, जितना पैसा इसराफ में जा रहा है। ठीक है, जरूरत के कपड़े दूल्हा सिला दे, दुल्हन को भी दे दे, जरूरत के कपड़े अगर है तो ठीक है, वरना खाली शोबाजी है और खाली फैशन परस्ती है, ये सारा लानत में जा रहा है। बल्कि हर तरफ की हर तरफ की इसराफ तब्दील और ऊपर तरफ आता है कि जो ख्वाहिशात पर मान लगता है वो मान अजाब इलाही को दावत देता है। लोग अरजना अनुने का फरियत अमरना मुतरफीहा तो फसम उफीहा कौल पदम मरना हाथी रहा। कि जब मालदारों का माल जो है वो तर्फ और ख्वाहिशात पर लगता है तो अल्लाह ताला कह रहा है कि हम ऐसी बस्तियों को उलट देते हैं, उन पर अजाब इलाही नाज़िल होता है। इसलिए कोशिश करें कि इन खुराफात से अपने आप को अपने खानदानों को महफूज करें, करोगे इंशाल्लाह। दूसरे गुजारिश जो कि अभी ताज़ा इस मौके पर जो बात मुंतजमी और जिम्मेदारों की तरफ से थी कि माशाल्लाह ये जो हमारा इदारा है सोसाइटी मस्जिद मदरसे का अदीम इदारा है, तकरीबन 70 साल पुराना है और माशाल्लाह बड़ी खिदमत है इसकी, मदरसे की भी मस्जिद की सतह से भी बहुत सारे ऐसे खैर के काम यहाँ से वजूद में आए। अल्लाह ताला जिन लोगों ने जब जब भी जो इंतजाम किया इस लाइन की जो मदद है कि अल्लाह सबको कबूल फरमावे। लेकिन चूंकि उतार चढ़ाव हर जगह होते रहते हैं खानदानों में, घरों में, मुल्कों में, सब जगह पर, तो उतार चढ़ाव की नज़र बाज़ मरतबा ये होता है कि तरक्की रुक जाती है और उसके मुश्तमे तौर पर हम सब जिम्मेदार हैं। जिन हालात से अभी गुजर रहा है कि बाकायदा तौर पर कोई यहाँ वर्किंग कमेटी या बाकायदा तौर पर कोई इनके मुंतजमी जो इसके सारे उमूर को देखते हो, एक मुद्दत से जो मामला मुअत्तल पड़ा है, तो इसमें अगर इसको दोबारा बहाल करना और उसको दोबारा अपनी तरतीब पर लाना, ये सबकी मुश्तरक जिम्मेदारी और उसमें खसूसा जो मोहल्ले के जिम्मेदार समझदार किस्म के लोग, हमेशा जब जिम्मेदार समझदार किस्म के लोग आगे रहते हैं तो सारे उम्र सुलझे रहते हैं। जब तक बाप घर में होता है तो सारा निजाम कंट्रोल, भी जो समझदार है सारे बच्चों को उसने मेहनत मजदूरी करके पाला पोसा है तो निजाम चलता है। बाप का साया हटता है, बच्चों के पास जाता है, उसमें वो औरत सलाहियत सब में अच्छा नहीं होती, निजाम धर्म भरम हो जाता है। तो इसलिए जो जिम्मेदार समझदार किस्म के लोग हैं उनकी खसूस जिम्मेदारी, उसमें बाजे वो है कि जो कुछ जिम्मेदारी अदा कर सकते हैं, बाजे वो है जो जिम्मेदारी नहीं कर सकते लेकिन जिम्मेदारों को जिम्मेदारी तक पहुंचा सकते हैं। इसलिए बाहमी मशवरे से हमारा अगर काम कोई भी मशवरे से है उसमें खैर अल्लाह की तरफ से डाल दी है, कयामत तक अल्लाह ताला ने मशवरे में खैर डाली। तो बाहमी मशवरे से इस निजाम को काबू में करना, कंट्रोल करना, ये उनकी तरह का जिम्मेदारी है। तो जो तय तय हुआ है आपस में जिन हजरात ने भी तय किया है कि भाई जो पुराने जिम्मेदार फसली हजरात हैं वो भी साथ में बैठे और नए जो हजरात हैं जिनको मुंतखब करना है वो हजरात मिलजुल कर बैठकर इस निजाम को जल्दी से काबू में लाने की कोशिश करें। तो उसमें अब ये तो है बाजों का ये है भाई आदमी खुद से तो थोड़ा क्यों वादा लेने जाएगी बातों पर, खुद से आदमी और ये तो है भी कि अहदे के तालीम को अदा नहीं किया जाता है उसके साथ क्योंकि मदद नहीं होती, लेकिन अड़ोस पड़ोस वाले जानते हैं भाई ये आदमी मुनासिब है, ये आदमी मुनासिब, ये आदमी मुनासिब है, तो ऐसे मुनासिब आदमियों की राय पेश करके आगे का मजबूत निजाम बना देना चाहिए और उसमें जो पहले से चल रहे थे जो हजरात उन लोगों को आगे आना चाहिए और वो हजरात बैठकर आपस के बाहमी मशवरे से, इसमें किसी की नफसानियत ना हो। हाँ, नफसानियत जहां होगी तो नफसानियत ऐसी चीज है जैसे पानी के भरे हुए घड़े में कुत्ते ने मुंह मार दिया। नफ्स का जिस काम में भी हिस्सा हुआ उसकी मिसाल ऐसी है कि पानी के घड़े में कुत्ते ने मुंह डाल दिया। تو اللہ کے واسطے خالص مشورے کی بنیاد پر اگر اس نظام کو سوچا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس میں خیر ڈال دے گا اور مزید اس ادارے کو اللہ تعالیٰ قیامت تک خیر کے پھیلنے کا ذریعہ بنا دے گا، اور انتظام بھی اللہ نے چاہا تو بہتر سے بہتر ہوگا. صلاحیت بہت ہے، استعداد بہت ہے، لیکن با استعداد لوگ اگر پیچھے ہیں تو ساری استعدادیں جو ہیں وہ ضائع ہو جاتی ہیں. اس سے گزارش ہے کہ جو طے ہوا ہے کہ جو حضرات اس نوعیت کے ہیں، جو اپنے قریب میں ان اس نوعیت کے افراد کو جانتے ہیں، وہ ان کو آمادہ کر کے تیار کر کے یا وہ ان کی طرف سے ان کو پیشکش کر کے وہاں ان کے نام پہنچا کر کس کو دینے، بولے ایوب صاحب کو نام پہنچانے، تو ان کو نام پہنچا کے ان کو وقت طے کر کے آپس میں مذاکرہ کر لیں، مشورہ کر لیں اور مشورے سے اپنا نظام مرتب کر لیں. کر لیں گے ان شاء اللہ. اللہ تعالیٰ کی مدد.